नमो महावंदना कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यं नमः गौरवस्तु ते हे कृष्ण चैतन्यं दीनवं गौरवस्तु गोपेश गोपिका कांतं राधा कांतं सप्तकांतं गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
महाप्रभु जी ने प्रश्न किया, भूखी प्रेम से ऊपर भी कुछ और चीज है साफ करता। तो रामानंद जी ने कहा, गोपियों में भी सबसे श्रेष्ठ श्रीमती राधिका है, इसलिए राधा प्रेम ही सबसे श्रेष्ठ साध्य है, इससे बढ़कर कोई कुछ नहीं। और इसके लिए हमें आराध्य होने में भगवान का भी तरफ बतलाया। महाप्रभु जी ने भंगी से पूछा, राधा जी को चोरी करके ले गए, यदि प्रकट रूप में सबके सामने सब कुछ क्या करके ले जाते समय राधा जी सबसे श्रेष्ठ पेशावर, तो उसके बदले में उन्होंने बासुमती राधिका एक श्लोक उद्धृत किया और उसके द्वारा संसार की रति संसार भाषण और सचिव फलान राधा माँ भाई हृदय सत्यादि कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी श्लोक का अर्थ ये बतला रहे हैं। दूर श्लोक एक दूरी श्लोक है अर्थ विचारी ले विचारी तो उठे लोकल श्लोक का जब हम विचार करते हैं तो राधा की महिमा प्रकाशित है और मानो अमृत की फनी में हाँ इससे भी कोयला पेट्रोल और चीजें निकलती है, ऐसे ही प्राप्त हो जाती है। सप्तको की गोपी समय राग विलास एक सफ़ा छोटी गोपी एक सफ़ा छोटी गोपी लिखा है, किंतु इसका तात्पर्य अभिनष्ट है। अभिनष्ट गोपियां हैं, एक एक से परम सुंदर, लक्ष्मी जी को भी माफ करने वाले एक एक गोपियां हैं। उन लोगों के साथ में कृष्ण रात की रात समय एक एक गोपी के साथ में एक एक कृष्ण हैं और एक मूर्ति से राधा जी के पास में है। साधारण प्रेमी देखी सर्वत्र समुसार राधा सुतिल प्रेम हुई गम का, सबने साधारण प्रेम देखा राधा जी ने। हमारे पति जैसा प्रेम हमसे भी नृत्य कर रहे हैं, उनके साथ भी नृत्य कर रहे हैं, इनके हाथों में हाथ मिला रहे हैं, हमारे हाथों में हाथ मिला करके नृत्य कर रहे हैं। ऐसा देख करके सर्वत्र समता राधा सुतिल प्रेम हुई गम का, राधा जी का यह प्रेम वो बाम भाव ग्रहण कर, इसी को कह रहे हैं उज्ज्वल नीलमणि से हमारे लोग के पानी में कि अहर अहेरिंग गति प्रेम प्रेम स्वभाव सुधि लाभ हवे अतो हेतु अहेतु जूनोर मान उपनिष्ट। सांप टेढ़ा होता है, टेढ़ा मेढ़ा चलता है, जब तक जीवित रहेगा तब तक जरूर टेढ़ा मेढ़ा ही चले, तो सीधा नहीं। मरने के बाद ही यदि सीधा सांप को देखो तो समझो क्या मरा हुआ। ऐसे प्रेम भी कुटिल होगा, टेढ़ा मेढ़ा चलेगा, प्रेम की गति भी टेढ़ी होती है। यदि वो सीधी रही तो ये दक्षिण भाव आकर के प्रेम कम होगा, ऐसी प्रेम की रीति है। उसी की छाया इस जगत में है, वहां पर छाया है, यहाँ पर छाया है। तो इसी हेतु से इसी कारण से प्रेम की गति सुटिल है, तो वो हेतु हो और न हो, कोई कारण हो या न हो, जूनो और मान उतन सकी, जूनो माने राधा और कृष्ण दोनों, दोनों में मान उदित होता है। कोई हेतु हो ना है तो राधा जी कभी मान कर लेंगे और कभी कृष्ण भी मान कर लेंगे। राधा जी कृष्ण को मान सिखला रहे हैं, कैसे मान होता है वो मान सिखलाते सिखलाते राधा जी निर्धार जैसे अब कुछ कुछ सीख गए कहा हमें, अब कुछ कुछ थोड़ा सा मन करना सीखा। ऐसे तो कैसे होता है असत्य, फिर जब मैं कृष्ण ने मांग कर लिया और आता है बिहार जहाँ बोला ही बोलेंगे उधर उधर मुख कर दे, ऐसा तो गंभीर मांग किया जो माने ही नहीं। कहते हमने तुम मैं तुम्हारी शिक्षा दू, मैंने तुमको सिखला और हमने से तुम मांग करने लगे, ये मांग बिना मन के ही प्रेम नहीं हो। इसलिए कहते हैं ये मैं मान होता है परस्पर को सुख देने के लिए, इस जगत में होता है दुख देने के लिए। कृष्ण ने कभी मान किया है उतना बस एक बार मान किया तो मान ही नहीं छोड़ रहा है, राधा जी माफ बिठा दो। वो वहां के लिए कहते हैं प्रेम सरोवर के लिए एक फूल, राधा जी ने थोड़ा सा कुछ करके फिर बांधा एक फूल लेकर के नीचे शरीर पर छोड़ दिया
कमल
कमल, और उसे उनको आघात लगाया वो मन करा करके चले। अब वहां पर राधा जी तट कराने लगे, उनको भी होता है, राधा जी को तो होता है, इसलिए उदन चती इसलिए उनको हेतु अहेतु भाव से वहां पर कोई हेतु नहीं था, कृष्ण ने उनका अपमान नहीं किया, किंतु उन्होंने सोचा कि हम और वो क्या बराबर हैं, इसलिए उनको मान हो गया। शुभ करी रात खड़ी गला मान करी सारे ना देखिया बैकुल परिवार ये सबका मन हरण करने वाले हैं। आज उनका मन हरण किसी ने कर लिया और करने के कारण ये व्याकुल हो गए और व्याकुल होकर के चारों तरफ में उन्होंने राधा जी की सम्यक बासना कृष्ण ने उठा रखी। किसी भी कार्य के लिए बासना प्रसन्न बासना सब कार्यों का कारण है। पाप के लिए भी पुण्य के लिए भी किसी भी कार्य के लिए ये बासना
हृदय में होती
बासना हृदय में होती है। यह बासना होती है पूर्व पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार में ये बात वही बासना होती है। उस बासना को दृढ़ता पूर्वक दबाया भी जा सकता है और यदि उसको हम लगातार किसी साधन के द्वारा अच्छा ज्ञान करके प्रकाशित करें विकसित करें तो भी किसी हो जाएगी। ये बासनाएं यदि बुरी हैं तो उनको दमन करना चाहिए किंतु बस भजी कर नहीं पाता। बस वही फिर कारण होकर के फिर वही वासना कामना बनती है। वासना है सिक्स रूप और कामना है उसका कुछ स्थूल रूप और उसका स्थूल रूप है कार्य और नहीं होने पर वो कार्य क्रोध हो जाता और क्रोध से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। बुद्धि भ्रष्ट होने से एकदम सर्वनाश। इसलिए बुरी बात नहीं हृदय में हो तो उनको दमन करने की चेष्टा करें। कैसे होगा वो सत्संग से बिना सत्संग के वो बुरी बात नहीं। किंतु यहाँ पर कह रहे हैं राग संबंधी वासना कृष्ण प्रेम संबंधी वासना सत्संग वासना कृष्ण इच्छा राग लीला कृष्ण ने भी वासना जैसे राग लीला के प्रथम में सदा श्लोक में
भगवान
पर मन चक्र ये वासना जहाँ भक्तों में कोई वासना आई भगवान के भी हृदय में वासना आ जाए जरूर आएगी। गोपियों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए उनको प्रसन्न करने के लिए कृष्ण के हृदय में बात और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए गोपियों के हृदय में या समस्त प्रकार के भक्तों में ही बात नहीं। कृष्ण रास की लीला रास लीला करेंगे ये उनकी सम्यक वासना। इसलिए रास लीला वासना से रसिका श्रृंखला रासलीला का मूल सूत्र है राधिका जी। राधिका जी को प्रसन्न करना ही उनके रासलीला का प्रथम मूल उद्देश्य थी कभी तक संसार। इसीलिए उन्होंने कहा कहा बिना रासलीला नहीं था किसके मंडली छाड़ गया राधा राधा जी जब चली गई तो कृष्ण उनको खोजने के लिए रास छोड़ी किसके साथ में रास किस लिए रात जब राधिकाई नहीं रही मंडली छोड़ मंडली मैंने समस्त गोपियों को सत्ताधिक प्रत्यक्ष रूप में छोड़ दिया और आधार का अन्वेषण करने के लिए चले। कहा राधा ना पाई राधा जी को खोजते थे तब तो खोज करके कहीं नहीं जब मिली तो विचार करने लगे काम वाले छिन्न हनिया प्रेम के द्वारा छिन्न हो ये हम लोग विनर भगवतामृत में देखते हैं गोप कुमार जब भगवान कृष्ण से मिले जब कृष्ण गो कारण करने के लिए गए तो जब ये मिले तब कृष्ण भी उनको स्पर्श करके दोनों मुट्ठी को बदली दी गई। बड़ी मुश्किल से वो जब मुट्ठा उठी घट गई तब कृष्ण रह कर रहे हैं मैं तुमको एक जन्म से नहीं छोटी छोटी जन्मों से तुम्हें किसी प्रकार से अपने यहां लाने के लिए बड़ा उत्सुक था। मैं कोई एक बहाना खोजता था किस बहाने से तुम हमको मिल जाओ और तुम हमारे पास नहीं चले किंतु हमको कोई बहाना भी नहीं तुम देते थे कृपा करने के लिए बानन में क्या कोई भी किसी प्रकार से भी क्षणिक भी सुयोग मिलता है तो मैं तुमको ले आता करूँ तो तुम हमको किसी प्रकार से सुयोग ही नहीं दिया मिलने हम जीत जैसे अब ये सुयोग दे रहे हैं भगवान हम हरी कथा सुन रहे हैं कथा सुना रहे हैं उसे हरि नाम कर रहे हैं ये भगवान को सुयोग मिल जाए भगवान बद्ध जीवों के लिए जो भगवान का स्मरण नहीं करते उनके लिए सुयोग होते हैं विचारों को कैसे सुयोग दें कैसे उनके यहाँ किसी देश में जाएंगे साधु दें साधु मान करके ही उनको कुछ दिया उनसे संपर्क किया मीठी वाणी भी बोला एक भी कोई चीज किया महात्मा जी भूख लगी है खाएंगे अच्छा ले आओ तो पानी पी जाओ बस ये उनके लिए ये सुकृति हो सके जो एक बातें आपको कह दी आपके मन में लग गई और फिर आप अंत में ले कोई भी सुकृति होनी चाहिए जैसे कैसे भी लोग कोई बहाना इसलिए वहां पर रहे भगवान के हृदय में भी भक्तों के लिए सुनते हैं राधिका जी भी सुनेंगे ये तो कोई बड़ी भारी बात प्रत्येक भक्त के लिए उनके हृदय में ऐसी बात न होती है ये जीव हमसे कैसे मिले हमारी कैसी सेवा करें तो सपकोटि गोपी से नहीं काम निर्वापन कोटि कोटि गोपियां हैं किंतु कृष्ण के काम का निर्वापन नहीं हो रहा कृष्ण के हृदय में प्रेम को ग्रहण करने की जो दुख है और उसमें जो अग्नि होती है जठराग्नि वो निर्वापित नहीं हो रही वो कैसे होगी और कुछ बाकी है ये सब जितनी गोपियां हैं ये क्या है राधा जी की अंत कला कैदु प्रकाश इत्यादि सब एक एक भाव एक एक गोपियां अस्त प्रधान भाव अस्त गोपियां अस्त शक्तियां इसके बाद में और प्रकाशित कर सकती हैं सब राधा जी ही बनी हुई है कृष्ण के विभिन्न तरह के कामों को प्रकाशित करने के लिए तृप्त करने के लिए मूल में राधा जी है राधा जी मूल लता है और शक्तियां सब इसलिए सभी मिलकर के राधा जी सब प्रकार से उनकी इच्छाओं को पूर्ति कर राधा जी यदि केवल दक्षिण भाव से ही उनकी सेवा करें तो बम भाव जो कृष्ण में रस की है वो पूरा नहीं उसमें भी परस्पर के कितने प्रकार हैं इसलिए वो चीज नहीं होगी जब तक राधा पूर्ण नहीं आएंगी नहीं रहेंगी कृष्ण का आनंद परिपूर्ण मात्रा में नहीं क्योंकि हम लोग देखते हैं द्वारका में 16,000 भैंसियां हैं एक एक से परम सुंदरी रूपवती गुणवती हैं किंतु रात में विषाद करते हैं उन्हीं के पास जाकर के विषाद करके राधे को निगलते विचार से इत्यादि करते हैं इसलिए राधिका का गुण कितना है ये अनुमान हो सकता है जिसके लिए कृष्ण ही स्वयं विरह से विलाप कर रहे हैं चिन्ह हो स्वयं भगवान परब्रह्म स्वरूप भगवान जिनके लिए वो राधिका जी का कैसा गुण होगा प्रभु कहे जे लाली आई राम बहन प्रभु कहते हैं सब प्रसन्न गदगद हो गए जिसलिए हम आए मैं आया वो सब कुशल मोरत है मैं उसको अभी समझ लिया है? मुझे ज्ञान हुआ अभी तक ज्ञान हुआ जिससे हम मिल रहे तो अब फिर किसने प्रश्न करें सब कुछ ज्ञान हो गया तो अभी अनुभूति नहीं विज्ञान नहीं हुआ लॉ हमने सब पढ़ लिया सब लॉ पढ़ लिया किंतु किसी वकील के अधीन रह करके कुछ दिन प्रैक्टिस करके वस्तुतः हमने अनुभव नहीं किया अभी स्वतंत्र रूप में काम नहीं कर सकते उसी प्रकार से यहाँ पर राधा तत्व का राधा प्रेम का ज्ञान तो हुआ बस वही तक उन्होंने कहा मोर है ज्ञान हमारा विवेक ज्ञान दिया। एदे जानु जानिनु साध साधन निर्णय आगे आर आपके किसी सुनते हैं। मैंने अब तक साध और साधन का निर्णय हमने समझ या बात ठीक नहीं हुई, कुछ समझा किंतु कुछ बाकी रह गया। उन्होंने ऐसे ही एक साधारण रूप में उन्होंने कहा, मैं जान तो लिया था किंतु कुछ अभी कह रहे हैं क्या आगे आज की अभी और कुछ है मैंने बाकी रह गया। तब तक उन्होंने बताया अभी क्या बाकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी तो सब चल रहा है, अभी विलास तब तक प्रेम तब तक दोनों का इत्यादि बदलाया नहीं। जब तक ये सब किसके भाव है, यदि विलास भी होगा तो राधा जी के साथ और रस भी होगा तुम्ही के साथ, सब कुछ अभी राधा जी का ही ये सब तो चलेगा अंत तक कृष्ण स्वरूप राधा स्वरूप रस कौन सत्य प्रेम कौन तत्स्वरूप। मैंने कहा और कुछ आगे थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए तो ये बतलाइए कृष्ण का स्वरूप क्या है, राधा जी का स्वरूप क्या है, रस कौन सत्व और प्रेम कौन सत्व, चार तत्व हैं प्रेम के। कृष्ण का स्वरूप, राधा जी का स्वरूप, रस का तत्व और प्रेम का तत्व। कृपा कर यही तत्व कहत्व हमारे तुम बिना केहो यहाँ निरूपित सेना, आपके अतिरिक्त और कोई इसका निरूपण नहीं कर सकता, इसलिए आप कृपा करके बतलाइए। राय कहे यहाँ हमें किसी न जाने, तुम्हें जय कहा वो से कहूंगा, मैं तो कुछ नहीं जानता। दीनता से ये कह रहे हैं तुम्हारा शिक्षा पड़ी जन पार दक्षा की सब तुम्हें के लिए तुम्हारे मैं तुम्हारी शिक्षा से ही अर्थात शिक्षा के अपने प्रकार की होती है, दो प्रकार से साधारण, एक महान सदगुरु के रीति और दूसरा होता है सदगुरु के रीति। ये दो रूपों में शिक्षा होती है, महान गुरु शिक्षा गुरु को कहते हैं और चैत्य गुरु ये दो रूप में कृष्ण कहते हैं, ये शिक्षा देते हैं। महान गुरु माने महान माने भक्त, जो महत् श्रीमद् भागवत में आए हैं महत् से ये महान क्रिया
महान अंतःकरण है,
तो वो जो महान जो श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया हमारे गोस्वामी ने जो वर्णन किया है राधा और कृष्ण सब प्रत्येक पूर्ण रूप को जान करके उनके लीला इत्यादि का महत्व जानते हैं और उसमें प्रतिष्ठित हैं उनको कहेंगे महान। तो वो कृष्ण महान तो गुरु के रूप में और चैत्य गुरु के रूप में, चैत्य गुरु के रूप में जब भी कोई ठीक ठीक भजन करेगा श्रवण कीर्तन इत्यादि करेगा ठीक ठीक रूप में, साधुओं का संग भी ठीक से करेगा, उनकी सेवा करेगा, अंगों का पालन करेगा, तो उसके चित्त में भगवान प्रेरणा देकर के उसको उसकी प्रकाश कर उसके संदेह को दूर कर देते हैं। जैसे हमारे सोना चंद्रवती ठाकुर जी या तुलसीदास कबीरा जो की काम गायत्री का हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी थे, उन्होंने देख सुना उन्होंने देखा कि काम गायत्री में कहे 24 अक्षर होते हैं, गायत्री है ना 3 उसके विभाग है, प्रत्येक चरण में 8-8 अक्षर होना चाहिए, सब गायत्री होगी प्रत्येक तीन चरण में, तीन चरण के मंत्रों का वेद मंत्रों का नाम गायत्री होता है, कोई अनुसूत छंद होता है, कोई पुष्ट होता है। तो इसमें तीन चरण है, हमारे गायत्री में भी तीन चरण है, ब्रह्म गायत्री में और ओम में भी वही है, उसी का वो प्रकाश है। तो आठा सत्य सब में है, किंतु एक आदि अक्षर उसमें पड़ गई है। अब वो आदि अक्षर कौन है इसका निर्णय नहीं करते। क्यों नहीं निर्णय कर सकते? आदि तो साफ निर्णय हो जाएगा, आधा अक्षर आदि अक्षर है, जो अंत में खंड का है, आधा का है, वो आधा है। किंतु उनको संदेह जब कब हुआ, जब चैतन्य चेतानी कृष्णदास कविराज काल जब उन्होंने पढ़ा तो को भी देखा कि कृष्ण का एक अंग है
पूर्ण चंद्र,
24 इसमें चंद्र है कृष्ण के अंगों में, है 24 चंद्र कैसे हुए? देखो ये 5 9 9 का चंद्र, 5 5 10 और 5 का भी 20, ये 20 चंद्र हो गए। और मुख चंद्र और अच्छा तो ये कितना हो गया? 23 नेत्र कौन है? एक 2 3 ये 23 हो गया, 1 और 24 24 सत्तर होंगे। तो मैंने सभी पूर्ण चंद्र हुए, आधा वाला चंद्र इनको खोज ले वो समझ रहे थे जिसे खंड का ही आधा, किंतु को भी बतलाया उन्होंने जैसे ये पूर्ण चंद्र है। अब वो खोजते 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 मिले, यदि मंत्र का तात्पर्य हमारे हृदय में नहीं अनुभूत होगा तो मंत्र क्या होगा? तो सिद्धि होगी नहीं। हम लोग के हृदय में ऐसी भावनाएं नहीं, पहले तो हम समझ ही नहीं पाते हैं कि ये क्या चीजें, ये कृष्ण का स्वरूप है, राधा जी का स्वरूप, कृष्ण का पूर्ण स्वरूप है। ये नाम पहले बीज में है, पहला वाला है, और इसके बाद उसी के त्रिपद है वो उनके पूर्ण अंग का वर्णन, वही कृष्ण का स्वरूप। भजन करते 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 ये सब अंग जब उदित होंगे हमारे हृदय में, देखिए ये 24 चंद्र
खड़े जो
24 चंद्र ही हृदय में प्रदर्शन करके कृष्ण को प्रकाश, उसमें राधा जी ललिता विशाखा सतिया माता पिता भाई बंधु करता कृष्ण का जो कुछ है भजन करते करते। इसीलिए एक कल्प नहीं, 10 10 20 20 50 50 100 लग गए इसको सिद्धि करने में, 1-2 दिन नहीं, 1-2 वर्ष नहीं, 1-2 जन्म नहीं, इतने दिन परिपूर्ण रूप से इसकी सिद्धि के लिए लग, इतना कठोर साधन भजन किया तब हम लोग जिस गति से चल रहे हैं वो उस गति से चल रहे हैं जैसे कोई साधु महात्मा भजन कर रहे ने? एक महात्मा जी हमारे जैसे थे, भजन कर रहे थे इमली के पेड़ के नीचे, सुन रहे हैं ठीक से बैठिए, ठीक से बैठ करते पेड़ के नीचे बैठ करके हमारे जैसे भजन कर रहे थे, एक गाल उससे भी बात कर ले, एक गाल से भी बात कर ले, कभी उधर भी देखने कभी उधर भी देखने, ऐसे भजन कर रहे जैसा हम लोग करते हैं। कभी नींद भी आ जाती है, कभी सो भी लेते हैं भजन में, फिर उठकर करते हैं, किसी दिन किसी कारण से रह गया तो वो मंत्र भी रह गया, कोई भी बात नहीं पूरा कर लेंगे, किसी तरह से चलता है। कभी कर रहे हैं तो कभी इधर उधर में चित्त भी चला जाता है, क्या भजन कर रहे। नारद जी जा रहे थे, नारद जी को देखकर के पंडित सबका पूछे प्रभो कहाँ जा रहे हैं? बैकुंठ जा रहे। तो हमारी एक अरज है, अरज ये है कि मैं भजन कर रहा हूँ बहुत दिनों से, किंतु अभी तक कोई लक्षण नहीं देख रहा हूँ जो प्रभु को समझ, तो आप जा रहे हैं तो जरा प्रभु जी से पूछेंगे जो मैं कितने दिनों के बाद में उनको प्राप्त होंगे। तो नारद जी चल गया ठीक नहीं गए और भगवान से पूछा ये कितने दिनों के बाद में इस भक्त को दर्शन देंगे। तो उन्होंने कहा जिस इमली के पेड़ के नीचे वो बैठा हुआ है उसकी जितनी पत्तियां हैं उतने
जन्मों के बाद
जन्मों के बाद में साधन करते करते तब तो वो हमको पाएगा। और इतना सुन करके जो बड़ा प्रसन्न हो गए। वहां से नारद जी आए, नारद जी को पूछा, नारद जी कतराने लगे जिससे तो क्या इनका मन खराब हो जाए। जब सुना, जब नारद जी ने उसको बताया कि इमली के जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद में सब तुम्हारे ऊपर में चुका, आनंद से मत हो गए, अब गारंटी हो गई कि मिलेंगे, भले ही 10,00,000 करोड़ जन्म के बाद मिलेंगे किंतु अब सब मिलेंगे। बस आनंद होकर के एकदम नाचने लगा, तंग हो गया, एक तांग लगा दिया, साथ ही साथ में प्रभु वहां पर पहुंच गए, उसको दर्शन दिया। प्रभु नारद जी ने कहा जो प्रभु आपने तेतने जन्मों के बाद में कहा था और आप अभी आ गए जो, तो वो जिस गति से पहले भजन कर रहा था उस गति से उतना ही था, उतने जन्मों के बाद उसको दर्शन दे, किंतु अब जो इस समय जो सुन करके इतना संग हो गया इसलिए बाध्य होकर के हमको मैं आ गया। उसी तरह से हम लोगों के साथ हम भजन एक साथ होता, ऐसे ही भगवान के लिए जीव बहुता यदि हो तब तक हो। विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर जी को अब कहा जा जीवित हम नहीं रहे, जबकि भजन ही नहीं हुआ हमारा, कभी मंत्र को ही नहीं समझ पाया, उसकी स्तुति नहीं है तो क्या है, बस राधा कुंड में जाकर के फलांग मरेंगे किसने आकाश में आकाश बनेंगे, मरो मत, मरने से भगवान नहीं मिलते, मैं राधा जी बोल रही हूँ तुम विचित्र से आराधना करो। और एक व्याकरण है क्या नाम उसका, वर्णागम भाष्य व्याकरण व्याकरण, उसमें जाकर के तुम देखना उसमें वेद मंत्रों में यहाँ पर भी आए और उसके पहले य हो पहले, तो भी का पहले वाला जो य अक्षर है वो आता है, यही उसका नियम निश्चित गई। और जाकर के व्याकरण बड़ी मुश्किल से खोजा, उसमें था तो वो उपलब्ध भी नहीं, देखा देखा सके आ रही है तो इसमें ठीक है, और उसमें देखा मिलाकर के मंत्र में, मंत्र मिलाकर के देखा उस अक्षर के पहले वाला यही आधार वही है चंद्र अर्धचंद्र और बाकी सब चंद्र। अब सब बड़े प्रसन्न हुए, कुछ दिनों के बाद में ठीक एक एक अक्षर कृष्ण के वो एक एक संग एक जगह अक्षर नहीं छोकर पहुंचे उसी रूप में उनको दर्शन। हम लोग भी साधन साधन करते करते यदि ऐसा कर सकें तब तो वो हो गया। जैसे महाप्रभु जी भी एक ऐसा ही निर्देश दे रहे हैं, गुरु जी से जाकर के कहेंगे गुरु गोसाई की मंत्र दिला मोरे, तुमने ऐसा कौन सा मंत्र मुझे दे दिया, मैं तो पागल हो गया। और वो मंत्र ही हमें हंसाता है, सुताता है, नाचता हूँ, गाता हूँ, कभी गिरता हूँ, ये मंत्र के पड़ता, ये मंत्र आपने जो दिया मैंने किया, और करते करते मैंने देखा क्या एक श्याम किशोर देखभाल अत्यंत सुंदर पीली चादर बूढ़े हाथ में बंसी मुख में देखा, इतनी तहट से हमारे तरफ में देख रहा है मानो हमें आकर्षण कर रहा है, मैं उसके तरफ में दौड़ता और दौड़ करके यही तो करने के लिए थोड़ा सा हट गया, फिर मैं इधर दौड़ा, इसने मैं इधर टिक गया, मैं वही प्रस्थान से गिरी, फिर मैं पागल हो गया उसके लिए। क्या मंत्र है ये जो ऐसा हो गया? गुरु जी को गले से लगा दिए महापुरुष, गुरु जी को मिले, यही तो मंत्र था। मंत्र आपके आराध्य के रूप में प्रकट हो जाए, तब तो हम लोग इसके लिए चेष्टा करते हैं, ऐसा साधन भजन करते हैं। यदि ऐसा हर कर यही मंत्रों का फल, मंत्र में अवतृप्त में कोई भी अंतर नहीं। तो यहाँ पर
के प्रसंग
क्या करें, नहीं ये गुरु के लिए कह रहा, भगवान उनका रूप में प्रेरणा देते हैं,
महान से गुरु,
महान तो गुरु के रूप में और ये दोनों प्रत्यक्ष सत्य हैं। दोनों यदि हृदय से प्रार्थना करें, विश्वास करते जरूर मिलता है और हितर में प्रेरणा देते हैं। लोगों को इतना विश्वास नहीं है, किंतु विश्वास करने से गुरु जी ने मंत्र दे दिया है, गुरु जी और उसके बाद में क्या है और कुछ है? अरे साधन का करो, साधन करो, साधन नहीं करो, जितने साधन करेंगे ये देखेंगे जो वो जरूर कुछ न कुछ स्थिति हमारे हृदय में है। तो हृदय प्रेरण करो, जीवा कहा होगा आप कृपा करके हमारे हृदय में प्रेरणा देने रामानंद पास और जीवा से वाणी कहलाते, ये मैं जो कुछ कह रहा हूँ आपकी कृपा से ही, आपकी प्रेरणा से मैं कह रहा हूँ। की कहेंगे भालमंद की क्यों न जाए, मैं क्या कर रहा हूँ सिद्धांत तो सब ठीक है, कि देखी के लिए मैं नहीं प्रभु कहे मायावादी अमित सन्यासी भक्ति तत्व नहीं जाएंगे मायावादी पास, माँ प्रभु जी दन्य के मूर्ति है। इसलिए ये कहा मैं मायावादी था, मायावादी किसको कहते हैं जो भगवान के किसी भी विलास को नहीं मानता है, भगवान निराकार है, निरंजन है, उनका कोई रूप नहीं है, उनका कोई आकार नहीं है, उनमें कोई भाव नहीं है, जिनमें कोई करुणा नहीं है, कुछ भी नहीं है,
जो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं,
तो इसको कहते हैं
मायावादी।
माया के वजह से कृष्ण ने यह राशि इत्यादि की, ये सब माया। कृष्ण जो जो कुछ कृष्ण का हमें मालूम हो रहा है इस पर सब माया, संसार दिखता है, इसको कहते हैं ये माया के वजह से दिखता है। यदि पूछा जाए माया क्या है उनसे, तो कहेंगे माया भी झूठी है, सत भी नहीं, असत भी नहीं, अनिर्वचित असत अनर्गचनित का वचन के द्वारा व्यक्त भी नहीं किया जा सकता। ऐसी सचमुच में क्या चैतन्य महाप्रभु ऐसे ही थे? ऐसे थे मायावादी सन्यासी थे? ऐसा तो उनके जीवन में नहीं देखा जाता, बल्कि मायावादी बड़े बड़े धुरंधर लोग जो थे महाप्रभु के संग के प्रभाव से वो लोग मायावाद छोड़ करके भक्त बन गए, जैसे और सरस्वती और वाद को मायावादी, नवदीप के पड़ुआ सब मायावादी थे। इसके बाद में उसमें भारतवर्ष में मायावाद और वही बात शंकराचार्य का यह विचार चारों तरफ में फैल गया, सब लोग मायावादी। अभी भी भक्ति का प्रचार होने पर भी अधिकांश लोग मायावादी, यहाँ तक कि कल्याण गोरखपुर का जो कल्याण श्रेष्ठ है वो सब मायावादी है। मायावादी का कहना क्या है, अभी हम लोग कल गए थे वृंदावन में राधा रमन जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए, एक महीने से कोई उत्सव चल रहा है, रोज नया नया पुल बन रहा है और समझते हैं कि 20-25 हजार लगता होगा, सकता कम से कम 10-15 हजार बनेंगे, 10 नहीं है 10 हजार इतने दिन एक महीने तक मान लिया कि इनकी पांच हजार रुपया तो साधारण में लग जाता है। एक महीने तक रोज दिया कितना ये सब लोग खर्च कर रहे। प्रसिद्ध राधा माता मंदिर की प्रतिदिन ऐसे उत्सव सब संगीत इत्यादि होता है। भारतवर्ष में सबसे बड़ी जो ध्रुपद के माने हुए प्रतिष्ठित गायक थे जिनको पद्म भूषण उपाधि मिली उनके लड़के को ही है
पद्मश्री,
वो उनको भी पद्म मिला है। वो यहाँ पर गायन करने के लिए आए हैं। उनको 5,000 या 3,000 रुपया उनको मासिक मिल रहा है और वो गा रहे थे। हम लोग सुन तो वो गायन कर रहे थे क्या
गाना कोई
महा भक्ति वाला
भाया रे भाया मलिया मन भाया रे
सामलिया मन भाया रे बंसी बल
वाला मन
भाया रे मन भाया रे बंसी वाला मन भाया। एक घंटा उनका धूप ये चलता रहा
भाया कहीं
फिर कहीं तुम
कहीं मोहम्मद
कहीं मोहम्मद कहीं मूसा
कहीं ईसाई कहीं राम कहावा रे
और कहीं राम कहावा कहीं मोहम्मद कहीं ईसा कहीं
राम कहावा
राम कहावा रे
भाया रे
भाया रे मन भाया रे बंसी वाला मन भाया रे बस सुधर से गा रहे थे। और कभी लोग सब साधक सब वास्तव में लोग गान का जो सुख था वास्तव में सुन ये तो गंगा में लाए सब चौपट कर दिया ये राधा ने काम आया द्वारका भी जो नाम है और नंद नंद है दोनों एक नहीं है। वहाँ मोहम्मद ईसा राम बौद्ध और सब जितने हैं सब एक हुए। और उसका हमारे शास्त्रों ने बेकार का इतना परिश्रम करके ये सब निर्माण किया सामने सिंधु जिसको जगत मान्यता दी ये सब बेकार था। उन लोगों का ये कहना है कि भगवान निर्विशेष निराकार थी असल में वो भी मायावादी और द्वैतवादी। कहते हैं कि दुर्गा काली राम नृसिंह वामन मोहम्मद ईसा बुद्ध मोहम्मद जितने भी तत्व यहाँ तक कि गोंगा एक होता है पहाड़ी जाति के और सब जितने भी हैं सब एक ही चीज है एक व्यक्ति है। उसके यहाँ जाने के लिए बहुत से रास्ते हैं। जैसे यहाँ से हमको हरिद्वार जाना है तो हम
अलीगढ़ से जा सकते हैं
दिल्ली होकर के जा सकते हैं बस से जा सकते हैं पैदल भी जा सकते हैं
ट्रेन
से जा सकते हैं और बहुत से साधन है बहुत से मार्ग हैं। जिस मार्ग से हम जाना चाहें वहां पर पहुंच जाएंगे। इसलिए नाम का भेद केवल है दुर्गा काली शंकर हनुमान और कृष्ण ये सब वैष्णवों ने संप्रदायवादियों ने जातियानुति विचार के अनुसार में इसको ऐसा करते वास्तव में ऐसा किंतु यह विचार क्लास एक ही रहेगा न क्लास विभिन्न होने से मस्तिष्क का विकास होगा। सब क्लास को निकाल दो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये मत रखो ये सब डिवीजन किस लिए रखता वकालत में भी 3 वर्ष का ये क्यों रख दिया आपको एक ही दिन का रख दो कुछ वर्ष हो जाए ये ठीक नहीं। ये सब साधना के तारतम्य संसार में भगवत दर्शन का भी तारतम्य है नहीं तो स्पष्ट नहीं होता। अल्लाह माने होता है सबसे बड़ा और खुदा माने खूब जो हम लोगों का ब्रह्म है ना हम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ। वो खुदा, खुदा माने खुद ही, हम भी खुदा है, ये भाव एक है। किंतु जहाँ पर कृष्ण की ये सब लीला विलास, जहाँ पर की प्रवृत्ति से ही गोपियों के साथ में, सखाओं के साथ में तरह तरह के विलास कर रहे हैं, विश्व ब्रह्मांड को आनंदित कर रहे हैं और आनंद स्वयं ले रहे हैं, दूसरों को आनंदित कर रहे हैं, ये सब एक हो जाएगा। शास्त्र में उनमें विचार में ये सब, इसलिए किसी न किसी रूप में आज अधिकांश लोग वृंदावन में रहते हुए धर्म का परिचय देकर के भी और कोई इस बात ही संकर्म, क्यों उनका ऐसा संग नहीं है? वो तो संगीत का अभ्यास करते, धर्म का साधन तो करते नहीं, धर्म का साधन करते और भागवत पुराण ये सब पढ़ते तो सब कुछ मालूम है। श्रीमद भागवत को बिना पढ़े ये इन सब तत्वों का कभी भी ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा, श्रीमद भागवतम प्रमाण अमलम प्रेमापुमर्थम। इसे बिना भागवत को सुने और उसका संगति किए कभी भी भगवत तत्व का ज्ञान कभी भी संभव नहीं है। और ऐसे उन्नत ज्ञान को जो देते हैं वही हमारे भगवान से भी अधिक, जो कि जिनको समझता नहीं वो गुरु तत्व को नहीं समझता और गुरु कार्य ही नहीं होता। इसीलिए यदि वो समझ जाता थोड़ा सा भी बात को, तो गुरु का शिक्षा गुरु, शिक्षा गुरु में कोई अंतर नहीं समझेगा, एक समझ लेगा। और जितना भगवान के प्रति आकर्षित होता चला जाएगा, गुरु के प्रति भी वैसे ही। मैं तो कभी ये आज राय रामानंद जैसे महाप्रभु को सुना रहे हैं, महाप्रभु कितने कृतज्ञ हो रहे हैं, कितने पुलकित हो रहे हैं, कितने आनंदित, ये कौन है? थैंक यू, अपना सब तो उन्हें बतला रहे हैं और फिर सुन करके अभा नहीं रहे। इसलिए कहते हैं महाप्रभु अपने को का स्वभाव है सुखी, ये जाएगा नहीं। ये महाप्रभु स्वयं कौन है? तो वो अपनी कुटिलता कैसे छोड़े? इसलिए कुटिल होने के नाते अपने प्रेम को छिपा कर और भिन्नता वशता अपने को इस रूप में दिखा, ये कुटिलता का ही है। इसी को कहते हैं कुटिल, क्योंकि वो प्रेम के सबसे बड़े शिक्षक हैं। तो वही यदि कुटिलता छोड़ देंगे तो उसको क्या है? इसलिए कुटिलता को रखते हैं अपने को, यहाँ पर मायावादी सन्यासी पर है। किंतु यदि उनको कोई ऐसा ही मान ले तो वो जाएगा एकदम सर्वनाशी। इसको समझना चाहिए, जो लोग नहीं समझ पाते हैं, वैष्णव को समझना बड़ा भारी कठिन है। वैष्णव तो स्वभाव बस्तर कह देगा हम मायावादी हैं, हम विषयी हैं, विषयी घोर विषयी। अरे घोर विषयी कह रहा था तो वो ठीक कह रहा है, कैसे? किसके प्रति वो है? वो ठीक ही कह रहा है, जो कृष्ण ही तो विषय है, उनके प्रति मैं लिप्त हूं तो मैं विषयी ही। किंतु समझना बड़ा भारी, यदि कोई कह दे कि चैतन्य महापुरुष भगवान है, भगवान नहीं स्वयं भगवान और वो सत्य स्वरूप है, इसलिए जो कुछ महाप्रभु कह रहे हैं वो सत्य संकल्प सत्य स्वरूप होने के कारण जो कुछ कहा है वो परम सत्य कहा है, इसलिए वो मायावादी सन्यासी। बस हो गया, उनकी कुटिलता से कोई नहीं समझती। इसलिए भक्ति तत्व नहीं जानी मायावाद विभाषी महाप्रभु पर, मुझे तो भक्ति है ही नहीं है, मैं मायावाद अर्थात भक्ति के विरुद्ध भाव में मैं ही ब्रह्म हूं। किंतु ऐसी बात ये प्रकाशानंद सरस्वती इसमें बड़े भाई जी की पंडित मायावाद अद्वैत बात वो निर्विशेष बात, उनको सरल सहज थोड़े में ही, थोड़े से ही बातों में निरुत्तर कर दिया, थोड़े से ही बातों में, और उनको भक्ति तत्व में लेकर के पढ़े। ऐसे ही कितने बड़े तार्किक वो प्रकाश प्रबोधन भरता है और उनको भी थोड़े से चुप की बजाते ही थोड़े से ही बातों में, ये साधारण काम नहीं है, इन दो तीनों के कारण एक राय रामानंद एक वे प्रकाशानंद ये तीन चारों को जब महाप्रभु जी ने सद रूप में अपने मत में ला दिया विश्व के कितने बड़े सिख दिए थे सब अपने आप एक और क्या बाल निशान वो दिग्विजयी पंडित केशव काश्मीरी के हाथ इससे समस्त लोगों की चोटी उनके हाथ में आ गई और सब ने उनके बात को निर्विचार ऐसा नहीं करने से प्रचार नहीं होता इसलिए उन्होंने कहा तो ये मैं मायावादी हूँ किंतु यथार्थ में मायावादी नहीं संन्यास भी लिया उसी संप्रदाय किंतु यथार्थ में हुई नहीं हम संगीन हो मौन में जतु कैसे झूठे गीता में भी प्रयुक्त आ रहे हैं कृष्ण जैसे झूठ बोलते हैं मैं मट्टी में स्थायी कर लिया ऐसे ये झूठ बोल रहे हैं क्या सार्वभौम संग मोर मौन निर्मल हुई अरे तुम्हारे संग से तो उनका मन निर्मल हुआ और आप क्या कह रहे हैं उनके संग से मेरा मन कितना दूसरों को ये सम्मान देते हैं सार्वभौम हटकर आदमी मायावाद में दूषित इनका हृदय था मैं ब्रह्म हूँ करते भगवान विराकार है ये जगत मिथ्या है ये जगत मिथ्या नहीं है भाई जगत सत्य है किंतु तात्कालिक सत्य है हम सब परिणामवादी है अभी किसी चीज का जन्म हुआ स्थिति हुई कुछ बढ़ा बढ़कर के फिर प्रौढ़ हो गया प्रौढ़ हम धीरे धीरे भटने लगा फिर जर्जर हो गया अंत में जाते अस्थि वर्ष के विप्रणन के ये प्रत्येक संसार के चीजों में ये संसार अभी जो दिख रहा है एक पल के बाद में फिर ऐसा नहीं रहे जैसे यमुना जी का पानी अभी जो देख रहे हैं वो पानी वहां पर नहीं रहता कहां चला गया यदि धारा है न जाने कहां चला गया ऐसे गलत संसार में प्रगति हमारा शरीर अभी एक सेकंड पहले जो था ऐसा नहीं है क्यों परिवर्तन वो परिवर्तन इस ढंग से हो रहा है कि हमारे समझ में नहीं आते कुछ दिनों के बाद में देखने से ऐसा पता लगता है सार्वभौम के सामने हमारा मन निर्मल कृष्ण भक्ति सत्य कहो कहा मैंने कह दिया कृष्ण सत्य किसको कहते हैं भक्ति किसको कहते हैं आप उनको बतलाइए उन्होंने कहा तीनों कहे अन्य है ज्ञान कृष्ण कथा मैं कृष्ण कथा नहीं जानता रामानंद सभी जानते हैं हम एक और भी व्यक्ति थे प्रद्युम्न
प्रद्युम्न ब्रह्मचर्य
वो महाप्रभु के पास में गए जो प्रभु हम कुछ हरि कथा सुनना चाहते महाप्रभु मैं तो हरि कथा से जानता नहीं मैंने रामानंद से कुछ सुना था वो भी भूल गया तो रामानंद के पास में चले जाओ सुना तो वो गए सुनने के लिए ये समझ रख के बिना हरि कथा सुने कल्याण नहीं होगा चाहे आप लाख करें लाख रटे और पके और कुछ करें बिना साधु संत के हरिनाम भी स्वयं भगवान है किंतु वो निर्मल नहीं होगा हरिनाम नहीं आभास का आभास रह जाएगा या अपराधमय होता रहेगा इसलिए कोटि कोटि जन्मों में हरिनाम करने से भी वो काम पूरा नहीं होता वो धन जन पुत्र संपत्ति स्वर्ग और यहाँ तक की मुक्ति दे करके बस निरस्त हो जाए और साधु संघ में वही नाम शुद्ध होकर के क्रम से पहले शुद्ध होगा फिर रसमय होगा फिर पूर्ण रसमय होगा तो उस संसार में आगे बढ़ते 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 भाव महाभाव तक भी हो सकता है किंतु साधुओं से संग ऐसे नहीं है तो वो कहते हैं मैं नहीं जानता राय रामानंद उन्होंने कहा जो राय रामानंद तब जाए मैं तुम्हारे पास में इसलिए कि मैं कुछ कृष्ण कथा भगवत तत्व और भक्ति तत्व की बातें सुनना चाहती हम लोग भी यहाँ पर एकत्र प्रतिदिन होते हैं किस लिए हमारी भक्ति कृष्ण हो सकता है कि कुछ लोगों का इधर उधर अच्छा नहीं लगता तो इसलिए आ जाते हैं, और कुछ लोग सचमुच नहीं आते हैं, जैसे इसमें कोई अच्छी बात हो सके, हम लोगों का हृदय निर्मल हो जाएगा, शुद्ध भक्ति हो जाएगी और हमसे बात हो जाएंगे। तो तुम्हारे लेकर आया, तुम्हें मोरे स्तुति करो सन्यासी ज्ञान में, और आप हमको हमारा स्तुति करें कि आप सन्यासी सन्यासी है और हमको हरी कथा नहीं सुना रहे और स्तुति कर रहे हैं। देखिए, आप ये सोच रहे हैं कि मैं एक ब्राह्मण हूं, तो महाप्रभु जी कह रहे हैं मैं एक ब्राह्मण बालक और उसमें भी विद्वान हूं और उसमें भी सुंदर हूं और उसमें भी सन्यासी हूं, तो कितना दिन हो गया तो, और आप कौन हैं? एक तो है शुक्र जाति से कर्ण, उड़ीसा में कर्ण जाति होगी, कर्ण जाति होती है, और उसमें राज कर्मचारी और उसमें भी गृहस्थ, मैं कहा नीचे, आप मुझको सोच रहे हैं जैसे ऐसे और मुझको बतला रहे हैं कि मैं ब्राह्मण हूं, सन्यासी हूं, विद्वान हूं, इसलिए आप मुझको वंचना कर रहे हैं। कौन वंचना कर रहा है? राय रामानंद जी, किनको? इसलिए आप हमको हमारी स्तुति कर, किंतु देखिए शास्त्र में ऐसा लिखा है शिवा मिश्र शिवा न्यासी शूद्र के नुना है जय कृष्ण तत्वता कही थी बुहर शिवा विप्र क्या विप्र अथवा संन्यासी हो अथवा शूद्र हो कोई भी क्यों न हो जाति के अंतर्गत हो या बाहर भी हो ये कृष्ण तत्वता जो कृष्ण के तत्वों को जानते हैं हमारे समस्त संदेहों को दूर कर सकते हैं उनकी अनुभूति है वही व्यक्ति यथात्म गुरु जो कृष्ण तत्व वेदता नहीं है जो कृष्ण तत्व को नहीं जानता दूसरों को नहीं बतला सकता उसके हृदय में नहीं उतार सकता वो गुरु। इन्होंने क्यों कहा? महाप्रभु जी कह रहे हैं शायद आप ये समझ रहे हैं कि मैं सन्यासी हूं ब्राह्मण हूं और आप अपने को शूद्र समझ रहे हैं किंतु तत्ववेता है फिर भी शास्त्रों में लिखा है अगस्त संहिता एक और कोई एक ग्रंथ उसमें लिखा है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चार जातियां और चार आश्रम है इसमें ब्राह्मण सब वर्णों का गुरु और समस्त आश्रमों का गुरु सन्यासी जब वही ब्राह्मण और इधर सन्यासी हो गया तो बाकी चारों जो आश्रम है आश्रम का वो गुरु कौन ब्राह्मण जो सन्यासी यदि ऐसा कोई गुरु मिल जाए जो ब्राह्मण जाति का भी हो और साथ साथ में सन्यासी भी हो तो सुख मुखा दे यदि कोई क्षत्रिय है क्षत्रिय वंश का उत्पन्न तो उसको ऐसे ब्राह्मण का कम से कम कर दूसरा यदि ब्राह्मण में नहीं मिलता तो कोई वैश्य है तो उसको क्षत्रिय गुरु बना जब ये शूद्र है तो क्या करे वैश्य गुरु
वैश्य हो क्षत्रिय हो ब्राह्मण
और यदि कोई गृहस्थ है तो वो वानप्रस्थ या ब्रह्मचारी को भी गुरु कर सकता ब्रह्मचारी गुरु करेगा किसको
सन्यासी
और वानप्रस्थ किसको करेगा
सन्यासी
ऐसा नियम होना
सन्यासी किसको गुरु करें
बनकर के सन्यासी हो गया अब वो सबका गुरु हो गया परम उसका गुरु कोई नहीं शास्त्र या और सब भागवत इत्यादि में श्रीमद् भागवत में या उपनिषदों में यह बतलाया यह नियम जेनरल है। जेनरल माने
साधारण रूप में
साधारण तत्व साधारण जिनको तत्व ज्ञान नहीं, जो भगवान को नहीं पाना चाहते हैं, जो केवल खाना की पूर्ति करना चाहते हैं। खाना पूर्ति एक होती है नहीं, स्कूल में जाते हैं पढ़ते हैं, तो कुछ छात्र होते हैं मन से पढ़ते हैं और कुछ छात्र होते हैं वो खाना पूरी करते हैं। जो खाना पूरी करते हैं वो 5 साल फेल होते हैं 10 साल फेल, और पढ़ने वाले होते हैं 1 सेकंड उसमें से करते हैं, क्योंकि जो हम लोग समझते हैं तो वो खाना पूरी करने वाले लोगों के लिए वो ऐसे लोगों के लिए कह दिया गया जो ब्राह्मण हो और ब्राह्मण में भी सन्यासी हो तो वो कुछ भी नहीं जानता है तो उसको गुरु कहो, कोई बात केवल जनरल देख लो और देख लो जैसे काला गोरा वो ब्राह्मण बस ये हो। किंतु तत्वदर्शी व्यक्ति जो भगवान को पाना चाहते हैं उसके लिए ये सब नियम नहीं है। उनके लिए जहां भी जिस स्कूल में भी स्कूल के बाहर भी यदि तत्वदर्शी कोई व्यक्ति हो, भगवत तत्व जानने वाला हो, कृष्ण तत्व और भक्ति तत्व का जानना हो, वही गुरु है। जैसे विदुर जी थे, विदुर जी कौन कुल के थे, कौन जाति, उनकी जाति क्या कहा, जाति पुत्र धृतराष्ट्र के, धृतराष्ट्र के नहीं धृतराष्ट्र के पिता विचित्र विद्य, वो भी बाप के संतान नहीं और पुत्र हैं। और पुत्र किसके पर है, पिता कोई और हो और कोई व्यक्ति हो, उनके पिता थे विचित्र विद्य, उनको कोई संतान नहीं थी। तो व्यास जी को उनकी माता सत्यवती जी ने स्मरण किया, बेटा हमारा कुल का संहार हो जाएगा, अब तो कोई बच्चा नहीं होगा तब तो फिर सुधी भंग हो जाएगा, तो बच्चा हो उन्होंने साझे की अपनी तुम दोनों बहू अम्बा अम्बालिका को कह दो जो नंगी होकर के हमारे सामने आ जाए। तो एक आई किंतु कांपती ही एकदम शर्म के मारे लज्जित होकर के
और आग
एक आ गया, तो उससे जो हुए वो हुए पांडु
पांडु हुए पांडु वर्ण हो गया,
वो पांडु वर्ण लज्जा के मारे वो पांडु होकर के आई थी लज्जा से, इसलिए उनका पुत्र एक आई। और एक आई लज्जा के मारे आंख बंद कर दिया और उनके सामने आया तो उनका पुत्र, उन्होंने कहा दासी ने कृपा कर, अच्छा दासी को अपनी बुला, तो उनकी जो दासी थी उनको बुला, वो एकदम प्रसन्न चित्त से और स्वाभाविक रूप से उनके सामने आकर के खड़ी, काजी बेटी तुम धन्य है, तुमको सब सौभाग्यवान और सब सत्य ज्ञाता
संपन्न जन्म लिया गौतम जी चित्त से जन्म लिया।
इसलिए गुरु कौन है, आत्मा अजर अमर है, आत्मा की कोई भी जाति नहीं है, किसी भी तथ्य उसका जाति का निर्णय आत्मा से नहीं किया जाता, और शरीर हाड़ मांस और मेद मज्जा का बना हुआ एक श्रृंखला है, इसकी कोई जाति नहीं, ये जीवित नहीं, इसमें प्राण आत्मा की वजह से जीत पड़ता, प्राण में भी चेतनता नहीं है, वो वायु है पंच प्राण, आत्मा एक पृथक चीज है, पंच प्राण निकल जाने पर भी आत्मा रह सकती है, कोई जरूरी नहीं उसके अधीन नहीं, चली भी जाएगी, आत्मा स्वतंत्र है बल्कि भगवान के अधीन है। ये पंच प्राण मान लेके किसी कारण से इंजेक्शन देकर के उसको थिएटर हॉल में ले जाते हैं ऑपरेशन करने के लिए, उस समय उनको बंद कर दे तब भी आदमी तो जीवित रहता ही है, इसलिए इसके अधीन नहीं है, इसलिए आत्मा अजर अमर है और ये सबसे बहिर्भूत, इसलिए इस तत्व को और भगवत तत्व को जानने वाला जो व्यक्ति बहिर्भूत खासकर जो हमारे अंदर के मैल को आत्मा के मैल को दूर करके भगवान में छुट्टी लगा दे, वही खासकर कोई भी जाति कोई भी कहीं का ऊपर का हो उसके लिए। यहाँ सती चैतन्य महाप्रभु की तो ही कह रहे हैं ये गारंटी, इसलिए ये आप हमको वंचना मत कीजिए, इसलिए कह रहे हैं। इसमें भी आजकल कितने शब्द निकलते हैं हम लोगों के ये संप्रदाय में भी विचार आजकल निकला है, शिक्षा गुरु और शिक्षा गुरु का तारतम्य, और इसी में सब बन रहे हैं। एक बतलाया कृष्ण का स्वरूप होता है साक्षात शिक्षा गुरु, और कृष्ण का स्वरूप है शिक्षा गुरु। तो रूप बड़ा है कि स्वरूप बड़ा है? अरे रूप और स्वरूप तो दोनों एक ही है, रूप और स्वरूप में अंतर क्या है? एक स्वरूप को देने वाले एक रूप को देने वाले, इसलिए वहां पर कोई भी भेद तारतम्य नहीं है। किसी को उन्होंने शिक्षा दी और किसी को एक दूसरे गुरु में बैठे जो उनको शिक्षा दी, किसी ने शिक्षा दी। इसलिए ये सब का विचार न करके भगवान का भजन करना चाहिए और भगवान को प्राप्त करने के लिए चेष्टा करें। कुछ लोग कहते हैं शिक्षा गुरु, ये प्रभुपाद जी ने इसकी टीका दी है, इसी में प्रभुपाद जी ने कहा। लोग कुछ लोग कहते हैं शिक्षा गुरु में ये देखना चाहिए ये ब्राह्मण है और संन्यासी, ये देखना। किंतु शिक्षा गुरु जहाँ का भी कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जाति का हो, वो तत्व जानना उससे ले लेना चाहिए। किंतु दीक्षा गुरु में ये विचार करना जरूरी है कि वो सन्यासी और ब्राह्मण, ये भेद सृष्टि है, ये निर्बोध लोगों का काम है। दोनों एक ही तत्व है, इसलिए जहाँ कहीं भी शुद्ध गुरु मिले, नारद जी का कौन सा जाति है, वो भी तो दासी पुत्र थे,
गोस्वामी जी
शुद्ध गोस्वामी जी थे,
रथ को चलाने वाले क्या भी होंगे,
वैसे गौतम ऋषि भी और भी तो इसलिए
गुरु बने।
बल्कि एक समय की बात है, एक लड़का था, वो किसी अपने गुरु गौतम के यहाँ गया, एक थे गौतम ब्राह्मण थे ऋषि थे ब्रह्मभक्त, एक लड़का उनके पास में गया, उनके पास में अध्ययन करने के लिए, वेदों का अध्ययन करूंगा भगवान का भजन करूंगा। उन्होंने कहा कि अपना नाम गोत्र बतलाओ, बिना नाम गोत्र किए कोई भी काम उस समय नहीं होता, आप लोग धर्म देखिए घर देखिए जाओ। पास में गया, गुरु जी ने पूछा जी अपना नाम और गोत्र बतलाओ, इधर सुनो इधर। उसने कहा मेरा नाम
सत्यकाम
है, मेरी मैया का नाम जवाला और मैं इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं जानता, मारा पर क्या कुछ भी नहीं। तो तुम जा अपनी मैया से पूछा कि तू किसका बेटा है और तुम्हारा गोत्र क्या है, तब मैं किसी को शिक्षा देता हूँ, ऐसे नहीं उपनयन देता हूँ, उपनयन दे करके और उनको शिक्षा हो गया। उसकी मैया से पूछा कि मैया हमारा गोत्र क्या है, हमारे पिताजी का नाम क्या है, हमारे वो गुरु जी पूछ रहे हैं, नहीं तो हम नहीं स्कूल में भक्ति कर रहे हैं। उसने कहा जैसे जाकर के अपने गुरु जी से कह रहा है, मेरी माता जीवा काल में पति विहीन की पति नहीं था, बहुत से पति हमारे थे, उसमें कौन से पति से तुम पैदा हुआ मुझको पता नहीं है, तुम कह देना कि हमारी मैया का नाम जवाला है, मैं उसका पुत्र हूँ, हमारा यही मास्टर। तो ठीक ठीक जाकर के गुरु के चरणों में हाथ जोड़ करके वो कहा, ये मेरा नाम जवाला गौतम है, मेरी मैया ने ऐसा कहा है, जब मेरे युवावस्था में बहुत से पति थे किंतु मैं नहीं जानती ये किससे तू पैदा किया। इतना सत्य तो कोई ब्राह्मण भी नहीं बोल सकता, तुम यथार्थ में ब्राह्मण हो, तुम सरल हो और सत्य कहते हो, इसलिए तुम ब्राह्मण से लड़के और तुमको ब्राह्मण समझ करके तुम्हारा उपनयन देकर के तुमको विद्या दे सकते हैं, बस उनको कोई गुप्त पुत्र की जरूरत।
यहाँ पर केवल गुणों के कारण
श्रीमद भागवत सत्य प्रमाणी ग्रंथ उसमें बतला रहे हैं कि एक ही शब्द थे, उनके 100 लड़के हुए, 100 लड़के में बड़ा वाला क्षत्रिय हुआ वो पृथ्वी का शासन करता भरत महाराज हुआ और उसमें नौ हुए नौ जोगेंद्र जाति पाति से अति परमहंस हुए ब्राह्मणों के भी गुरु हुए और एकासी थे वो क्या हुए
परमकांडी
ब्राह्मण ये कैसे हो गया पहले ऐसी था
और नौ
यदि ऐसा ही गुण और कर्म पर आधारित होकर के गुण संसार में ब्राह्मण लोग काम करने लगे क्षत्रिय लोग काम करने लगे वैश्य लोग काम करने लगे सब जगत फिर ऐसा ही सप्तयुग हो गया
तो
त्रेता युग तक ऐसा था उसके बाद में कोई गुण हो न हो कोई जरूरत नहीं कोई साधन भजन हवन और ये ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य माने क्या ब्रह्मचर्य माने लोग समझते हैं स्त्री के साथ में नहीं रहना ही ब्रह्मचर्य है या गलत है ब्रह्म में विचरति ब्रह्म
ब्रह्म
में विचरण करने वाला तत्व से जान करके मैं भी ब्रह्म का अंश हूँ मैं सेवक हूँ अकृत्य पूर्ण ब्रह्म है उनको तत्वता से जान करके वैसे भजन इत्यादि करने का नाम है ब्रह्मचारी ब्रह्म ब्रह्मे आचरति चलता है चरती इसका सब तात्पर्य हम लोग भी सचमुच में सभी स्वभावतः सभी लोग ब्राह्मण हैं और जन्म से सभी शूद्र हैं स्वरूप से हम लोग सभी ब्राह्मण हैं क्योंकि ब्रह्म से उत्पन्न है और ये शरीर से जन्म लेने के कारण जन्म ना जाते संस्कार संस्कार से संस्कार माने क्या पहले वाला संस्कार शुद्र का जो था उसे हमारा जन्म हुआ किंतु संस्कार माने अब इस जन्म के जो हमारा संग है उस संग से हमारा संस्कार दे रहे हैं कौन दे रहा है गुरु बच्चे कैसे अपनी संग से ऐसे जमीन ब्याल दिया और मंत्र कह दिया संस्कार हो गया ऐसा संस्कार नहीं हो कुल को जानते ही नहीं इसे यह रस्सी किस लिए पहनाई जाती है नहीं समझते ये संस्कार के लिए दिया जाता है कान पर चढ़ाओ तीन बार प्रतिज्ञा करो जब ही उस पर जाओ किस लिए मैं ब्रह्म जातीय वस्तु हूँ भगवान तीन है भगवान उनकी शक्ति
और
भक्त भगवान भक्ति 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 इस तरह से जीव तत्व माया तत्व भगवत तत्व ये तीन तत्व हैं इस तरह से तीन 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 मिलकर के नौ गुण हुआ इनके प्रति हमारा कर्तव्य है दायित्व है ये सब उपनयन है ये विद्याएं ज्ञान करके क्रम से अभ्यास करते करते उपनयति ये विद्या उसको ब्रह्म तक ले जाती है भगवान तक ले जाती है इसलिए इतने शक्ति जी को नहीं जानते आज ब्राह्मण भी जनेऊ खोल करके
पेड़ में टांग
जानते ही नहीं है किसी
पर ये
विशेष करके विदेशों में जितने भी भारतीय हैं यहाँ भी भारतीय लोग हैं और विदेशों में तो सब क्योंकि जानते नहीं है सब इसलिए कहते हैं किस भी शुद्र कुल में भी कोई जन्म ले कहीं भी ले यहाँ तक स्त्रियां भी यदि तत्वदर्शी हैं तत्व ज्ञानी है भगवत तत्व को जानते वो भी गुरु है
तो
आत्मा के साथ में संग से होता है उनका भी संस्कार होता है
नहीं इन लोगों का जैसे पांच रात्रि दीक्षा विधान के द्वारा संस्कार होता है तो स्त्रियों का जैसे
उनका मंत्र के द्वारा हो जाता है काम गायत्री गोपाल मंत्र और ये समस्तों के द्वारा हो जाता है भगवान की भक्ति का भाव दे करके उनका संस्कार हो वो परम पवित्र हो गई इसीलिए गर्भी इत्यादि हमारे प्राचीन काल में जन्मा जी अभी भी गंगा माता ठाकुरानी ये सब गुरु तत्व है
हेमलता ठाकुरानी जी गाय तो स्त्री है तो स्त्रियों को नहीं दिया जाता
क्या
गायत्री मतलब स्त्री है स्त्रियों को नहीं दिया जाता झगड़ा कर
जब उसका असल स्वरूप ही आ गया काम गायत्री में तो नीचे वाला देने की क्या जरूरत है जब भी कोई परमहंस हो गया तो उसको जनेऊ लेने की क्या जरूरत है
तो ब्रह्म गायत्री को क्यों राधा जी के मंत्र मानते हैं
अभी कल्पना कर और जिसको वही राधा जी का ही मंत्र मिल गया तो फिर इसके लिए क्या
अयोध्या
बात